अध्याय 31 नादाब और अबीहू का पाप। यह अध्याय लेव्य व्यवस्था 10 आयत 1 से 11 पर आधारित है। पवित्र मंडप के उत्सर्ग पश्चात याजकों को उनके पवित्र कार्य के लिए अभिषिक्त किया गया। इन धर्म क्रियाओं में 7 दिन का समय लगा और प्रत्येक पर विशेष अनुष्ठान किया गया। 8वें दिन याजकों ने अपनी परिचर्या प्रारंभ की। हारून और उसके पुत्रों की सहायता से परमेश्वर द्वारा अपेक्षित बलि की भेंट चढ़ाई और परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया और अपनी महिमा को विशिष्ट रूप से प्रकट किया। परमेश्वर की ओर से अग्नि प्रवाहित हुई और वेदी पर चढ़ाई भेंट को उसने भस्म कर दिया। लोग इस ईश्वरीय सामर्थ्य के आश्चर्यजनक प्रदर्शनों को अत्यंत रुचि से देखते रहे। उन्होंने इसमें परमेश्वर की महिमा और कृपा दृष्टि का प्रतीक देखा और उन्होंने एक साथ मिलकर उसकी स्तुति और आराधना की, और उन्होंने ऐसे दंडवत किया मानो वे परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हो। लेकिन इसके बाद शीघ्र ही महायाजक के परिवार पर एक आकस्मिक और भयानक विपत्ति आ पड़ी। आराधना के समय जब लोगों की प्रार्थनाएं और स्तुति परमेश्वर की ओर उठ रही थीं, हारून के पुत्रों में से दो ने एक एक धूपदान लिया और उसमें सुगंधित लोबान जला दिया ताकि वो परमेश्वर के सम्मुख मन भावनी सुगंध के रूप में फैल जाए। लेकिन उन्होंने ऊपरी आग का प्रयोग करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। लोबान को जलाने के लिए उन्होंने परमेश्वर द्वारा स्वयं प्रज्वलित की गई पवित्र अग्नि के स्थान पर सामान्य अग्नि का प्रयोग किया, जबकि परमेश्वर का आदेश था कि इस कार्य के लिए उसी के द्वारा प्रज्वलित अग्नि का प्रयोग किया जाए। इस पाप के फलस्वरूप यहोवा के सम्मुख से आग निकली और वे लोगों के सामने ही भस्म हो गए। मूसा और हारून के बाद नादाब और अबीहू को इज़राइल में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। पर्वत पर 70 पुरनियों के साथ महिमा का दर्शन करने की अनुमति देकर परमेश्वर ने विशेष रूप से उन्हें सम्मानीय ठहराया था, लेकिन उनके द्वारा आज्ञा के उल्लंघन को ना ही अनदेखा किया जा सकता था और ना ही हल्के में लिया जा सकता था। इस कारण उनका अपराध और भी संगीन माना गया, क्योंकि मनुष्य ने अधिक प्रकाश प्राप्त किया, क्योंकि इज़राइल के राजकुमारों के समान वे पर्वत पर चढ़े और उन्हें परमेश्वर के साथ संगति करने का व उसकी महिमा के प्रकाश में वास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हें स्वयं को इस बात से प्रसन्न नहीं करना चाहिए कि वे बाद में बिना दंड पाए पाप कर सकते हैं और कि उन्हें इस प्रकार सम्मानित करने के बाद परमेश्वर उनके अधर्म को दंडित करने के लिए कठोर नहीं होगा। यह एक घातक छलावा है। प्रदत्त प्रकाश व विशेषाधिकार वापसी में दिए गए प्रकाश के तदनुसार पवित्रता और सदाचार की अपेक्षा करते हैं। इससे थोड़ा भी कम परमेश्वर स्वीकार नहीं कर सकता। महान आशीषों या विशेषाधिकारों के कारण निर्भयता या असावधानी को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। इन्हें कभी भी मनुष्य को पाप करने का अधिकार नहीं देना चाहिए और ना ही प्राप्तकर्ता को यह आभास कराना चाहिए कि परमेश्वर उनके साथ खुश न होगा। परमेश्वर द्वारा दिए गए सभी सुअवसर, आत्मा में उत्साह, प्रयत्न में तत्परता और उसकी इच्छा पूर्ति के लिए जोश भरने का उसका साधन है। नादाब और अबीहू को उनकी किशोरावस्था में आत्मसंयम के अभ्यास में प्रशिक्षित नहीं किया गया था। पिता के सुनम्य स्वभाव, सत्य के लिए उसमें दृढ़ता के अभाव के कारण उसने अपने बच्चों के अनुशासन की उपेक्षा की। उसके पुत्रों को प्रवृत्ति का अनुसरण करने की अनुमति दे दी गई थी। लंबे समय से पोषित असंयम की आदतों ने उन पर ऐसी पकड़ प्राप्त की कि उन्हें समाप्त करने की शक्ति सबसे पवित्र कार्यभार के उत्तरदायित्व में भी नहीं थी। उन्हें पिता के आधिपत्य का आदर करना नहीं सिखाया गया था और वे परमेश्वर की अपेक्षाओं के प्रति संपूर्ण आज्ञाकारिता की आवश्यकता को नहीं समझ पाए। हारून के गलत समझे हुए दयालुतापूर्ण व्यवहार ने उसके पुत्रों को पवित्र दंडाज्ञा के अधीनस्थ बनने के लिए तैयार कर दिया। परमेश्वर की योजना लोगों को ये सिखाने की थी कि वे आदर और श्रद्धायुक्त भय के साथ और उसके द्वारा नियुक्त तरीके से उसके पास आएं। वह आंशिक आज्ञापरता स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी आराधना की पावन घड़ी में लगभग सब कुछ उसके निर्देशानुसार संपन्न करना पर्याप्त नहीं था। परमेश्वर ने उसकी आज्ञाओं का तिरस्कार करने वालों को शापित किया है और उन्हें भी जो सामान्य व पवित्र वस्तुओं में अंतर नहीं करते। वो नबी द्वारा घोषणा करता है, हाय उन पर जो भले को बुरा और बुरे को भला कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाला को अंधियारा ठहराते। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने दृष्टिकोण से बुद्धिमान है, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को त्यक्त कर दिया और इज़राइल के पवित्र परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है। यशाया 5:20-24। किसी को भी इस धारणा से स्वयं को छलावा नहीं देना चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञाओं का कुछ अंश आवश्यक नहीं है, या ये कि वो जिसकी अपेक्षा करता है उसके लिए प्रतिरूप को स्वीकार कर लेगा। विलाप गीत 3:37 में यर्मया नबी ने कहा, यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वो पूरा हो जाए। परमेश्वर ने अपने वचन में कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जिसका मनुष्य अपनी इच्छानुसार पालन या अवमानना करे और परिणाम न भुगते। यदि मनुष्य संपूर्ण आज्ञापरता से अलग कोई और मार्ग चुनते हैं तो वे पाएंगे कि अंत में मृत्यु ही मिलती है। नीतिवचन 14:12। मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलाजर और ईतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न ही अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा न हो कि तुम भी मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। महान अगवे ने अपने भाई को परमेश्वर का कहा स्मरण कराया, जो मेरे समीप आए। अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने और सभी लोगों के समाने मेरी महिमा करें। हारून चुप था। उसके पुत्रों की मृत्यु, जो इतने भयानक अपराध के कारण बिना चेतावनी के भस्म कर दिए गए, उस पाप ने जो अब उसे अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का परिणाम प्रतीत हुआ, पिता के हृदय को वेदना से भर दिया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं किया। किसी भी प्रकार के शोक प्रदर्शन से ये नहीं लगना चाहिए था कि वो पाप के प्रति सहानुभूति दिखा रहा था। कलीसिया को परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाने का अवसर नहीं देना था।
प्रभु अपनी प्रजा को उसके सुधारों की न्याय संगतता को स्वीकार करना सिखाना चाहता था, ताकि अन्य लोगों में भय उत्पन्न हो। इज़राइल में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें इस भयावह दंडाज्ञा की चेतावनी परमेश्वर की सहिष्णुता पर परिकल्पना से बचा सकती थी, नहीं तो वे भी अपने अंत को स्वयं ही निश्चित कर लेते। पवित्र ताड़ना उसके लिए है जो पापी के लिए झूठी सहानुभूति रखता है, जो पापी के पाप को क्षमा कर देने की चेष्टा करता है। पाप का प्रभाव नैतिक अनुभूति को शिथिल कर देता है, जिससे अपराधी को अपने पाप की जघन्यता का एहसास नहीं होता, और पवित्र आत्मा को दोष विभावक शक्ति के अभाव में वो अपने पाप के प्रति आंशिक रूप से अंधा बना रहता है। ये मसीह के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि वे गलतियां करने वालों को उन पर मंडरा रहे संकट से अवगत कराएं। पाप के परिणामों और वास्तविक स्वभाव के प्रति पापी की आंखों को अंधा करके जो व्यक्ति इस चेतावनी के प्रभाव को नष्ट करता है, वो स्वयं को संतोष दिलाता है कि ऐसा करके वो अपनी उदारता को प्रमाणित करता है। लेकिन ऐसे लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कार्य को बाधित करने और उसका विरोध करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत रहे हैं। वे पापी को सर्वनाश के कगार पर जाकर ठहरने को बहकाते हैं। वे स्वयं को उसके अपराध में भागीदार बना रहे हैं और उसकी पश्चातापहीनता के लिए स्वयं को बुरी तरह से उत्तरदायी बना रहे हैं। कई लोग इस प्रकार की झूठी व भ्रमकारी सहानुभूति के कारण विनाश को प्राप्त हुए हैं। नादाब और अबीहू ने ये घातक अपराध कभी नहीं किया होता यदि वे मदिरा के अनियंत्रित सेवन से पहली बार आंशिक रूप से मदहोश न हुए होते। वे भली भांति समझते थे कि मिलाव वाले तंबू में, जहां परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होती थी, स्वयं को प्रस्तुत करने से पहले संस्कारपूर्ण व कर्तव्यनिष्ठ तैयारी आवश्यक थी। लेकिन अपने असंयम के कारण वे अपने हो गए और उनका नैतिक दृष्टिकोण संवेदना शून्य हो गया, जिससे वे सामान्य और पवित्र के बीच के अंतर को नहीं देख पाए। हारून और उसके उत्तरजीवी पुत्रों को चेतावनी दी गई, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई न तो दाख मधु पिए और न ही किसी प्रकार की मदिरा, कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी में ये प्रचलित रहे, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको, और इसराइलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जो यहावा ने मूसा के द्वारा उन्हें बताई है। मादक पेय के सेवन के प्रभाव से शरीर दुर्बल हो जाता है, मन की कर्तव्य विमूर हो जाता है और नैतिकता का पतन हो जाता है। ये मनुष्य को पवित्र वस्तुओं की धार्मिकता का या परमेश्वर की अपेक्षाओं की बंधनकारी शक्ति का एहसास होने से रोकते हैं। जो भी पवित्र उत्तरदायित्व के पदों पर आसीन थे, उन्हें पूर्णतया आत्मसंयमी पुरुष होना था, ताकि उनका विवेक सत्य और असत्य के बीच स्पष्टता से अंतर कर सके, ताकि वे सिद्धांतों के पक्के हों और उनमें दया दिखाए और न्याय करने की बुद्धिमता हो। मसीह के प्रत्येक अनुयायी का ये नैतिक कर्तव्य है। प्रेरित पत्रस कहता है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। पहला पत्रस 2:9। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपनी प्रत्येक क्षमता को यथासंभव उत्तम अवस्था में संरक्षित रखें, ताकि हम अपने सृष्टिकर्ता को स्वीकार योग्य सेवा दे सकें। जब मादक पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उनका प्रभाव भी वैसा ही होगा जैसा इसराइल के याजकों का हुआ था। अंतरात्मा को पाप की अनुभूति नहीं होगी और अधर्म की स्थिति में पहुंचाने तक दृढ़ीकरण की प्रक्रिया निश्चित है, जब तक सामान्य और पवित्र में महत्वपूर्णता का भेद समाप्त हो जाएगा। फिर हम ईश्वरीय अपेक्षाओं के मानक पर कैसे खरे उतर सकते हैं? पहला कुरंथियों 6:10-20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है? और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहला कुरंथियों 6:19-20। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। 4:10-31। प्रत्येक युग में मसीह की कलीसिया को यह भयावह व गंभीर चेतावनी दी गई है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को भ्रष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो।